صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوتی نظران. گزشتہ اتوار صاحب کے کچھ سوالات تھے جو ادھورے رہ گئے تھے, تو آج اسی سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ان کا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ اگر ذکر الہی کرنے والا شخص ایسی جگہ چلا جائے جہاں کالا جادو ہو رہا ہے, یا کالے جادو کا حامل اس شخص کے پاس آ جائے, تو اس شخص کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسے بد اثرات سے بچاؤ کے لیے فوری طور پر وہ جگہ چھوڑنے کے علاوہ کیا تدابیر کی جائے؟ دیکھیے, جو شخص واقعی ہی اہل علم ہے, سر درد تو نہیں ہوتا لیکن اسے سر میں جکڑے جانے کا احساس ہوتا ہے, جیسے سر بھاری ہو جائے. کوئی اگر چھوٹے سائز کی ٹوپی سر پر رکھی جائے تو وہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے. وہ نیچرل ہے کہ وہاں چونکہ صاحب علم تو رحمانی کلام پڑھتا ہے, تو کالا جادو یا سفلی عمل وہ ایک طرح سے جنگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ صاحب علم پر مرتب ہو نہیں پاتے, لیکن اس میں ریزسٹنس وہاں جو شروع ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے سر میں وہ بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں, اس لیے کہ وہ ایک دو منٹ کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور ویسے بھی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں, اس لیے کہ انہیں اپنے رب پر اتنا مکمل بھروسہ ہوتا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ میں جس ہستی کا ذکر کرتا ہوں وہ مالک کل ہے, قادر مطلق ہے, اور یہ سفلی علم اور کالا علم اس سے باہر نہیں ہے. تو غالب تو ذکر رحمان ہی آئے گا, ذکر شیطان نہیں آ سکتا کبھی. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جس شخص پر کالا جادو ہوا ہو وہ صحیح اور غلط میں تمیز بھول جاتا ہے اور اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے؟ نہیں, میرا ذاتی طور پر تو خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں اس پہ ہوتا. صرف بات یہ ہے کہ انسان کا فوکس اگر بھٹک جائے اور وہ دنیاوی فوائد یا کسی کی دشمنی میں یا کسی کو فائدہ دینے میں اس طرح سے فوکس ہو جائے کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے, جیسے ہمارے یہاں آج کل میجر فوکس ہمارا پیسہ کمانے پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح دولت حاصل ہو جائے, اور ہم اس میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کا جب فوکس فائدے پر چلا جائے, اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے پر ہو جائے, تو وہ اس جذبے کے غلبے میں اس طرح سے اندھا ہوتا ہے کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی. ادروائز वैसे उसके अच्छे और बुरे की तमीज़ बरकरार रहती है और याददाश्त भी मुतासिर हो तो मैंने नहीं देखी, मेरा ज़ाती तजर्बा ऐसा नहीं है। उन्होंने अगले सवाल में फिर मुझे रिमाइंड कराया है कि आपने एक बार कहा था बहुत से साहिबान इल्म ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ नमाज ईशा अदा की फिर खाने काबा चले गए और बाकी नमाजें वहाँ अदा कर लीं। वो अपने आप को खुद ही वहाँ देख रहे होते हैं, ये एक अलहदा डायमेंशन है। देखिए ये रूहानी वारदात है असल में कि एक आदमी पर अल्लाह की ऐसी रहमत हो जाए इल्म के लिहाज से कि वो रूहानियत को उस मकाम पर चला जाए। जैसे एक मकाम ये है कि एक शख्स कई जगहों पर एक वक्त देखा जाता है, एक मकाम ऐसा भी है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि उन्होंने अपने मुर्शिद को उमरा करते हुए देखा, या वो ही आपसे कह देंगे कि हमने अपने मुर्शिद के साथ उमरा किया, हालांकि उनके मुर्शिद वहाँ नहीं होते। वो भी एक रूहानी मकाम है। इसी तरह एक रूहानी मकाम ये भी है कि कुछ लोगों को रब ताला उस जगह ले जाता है कि वो जिस्मानी तौर पर कहीं होते हैं, रूहानी तौर पर वो कहीं और इबादत कर रहे होते हैं। तो ये रूहानी मकाम की बात है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम रूहानियत के उस मकाम पर आ जाएं जहाँ अल्लाह हमें ये सआदत बख्श दे कि हम रूहानी तौर पर खाने काबा में ही नमाज पढ़ सकें। अगला सवाल ये है कि क्या वजह है कि शागिर्द जब अपने मुर्शिद साहब से मुख्तलिफ सवालात पूछता रहता है तो ख़ुद को मुर्शिद की तरफ मुतवज्जो पाता है, लेकिन जब वो अपने अंदर उठने वाले मुख्तलिफ सवालों पर चुप का पहरा लगा देता है तो उसे अपना जहन बंद और घुटनज़दा महसूस होता है। यूँ लगता है जैसे मुर्शिद के साथ उसका ताल्लुक और रब्ता कमज़ोर हो गया है। आप एक ही कमरे में अगर बैठे हैं माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने शौहर के साथ, लेकिन अगर एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे, खामोश बैठे हैं और अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी नहीं है, तो कुछ देर में यही एहसास वहाँ भी पैदा होने लगेगा। तो आप ऐसा लगेगा कि शायद दूसरा जो उस कमरे में आदमी मौजूद है वो शायद ज़हनी तौर पर आपसे दूर है, या वो आपसे नाराज़ है, बात नहीं कर रहा आपसे। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है तो आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखने से ही कम्युनिकेट कर जाता है आदमी एक दूसरे के साथ। ये डिपेंड करता है कि मुर्शिद के साथ आपका ताल्लुक कितना गहरा है। बाज़ों का ताल्लुक इतना गहरा हो जाता है कि मुर्शिद के इंतकाल के बाद भी उससे मुर्शिद साहब से कम्युनिकेशन होती रहती है, लगता है कि उसे महसूस होता है कि मेरे मुर्शिद मेरे साथ हैं और जो सवाल वो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर पूछता है उसका जवाब खुद ब खुद जहन में आ जाता है। तो ये आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपके ताल्लुक मुर्शिद साहब के साथ क्या है। अगर तो खालिस्तन प्यार का ताल्लुक है अपने मुर्शिद के साथ, तो फिर कभी ये कैफियत नहीं होती मुर्शिद साहब से बात करें ना करें, उनके पास हों ना हों, कितनी दूर हों, वो एक एहसास रहेगा कि मेरे मुर्शिद मेरे साथ ही। लेकिन अगर ताल्लुक प्यार का नहीं है, इल्म के हसूल का एक ताल्लुक है, तो वहां आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और अगर आपका अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक दुआओं का है कि मैं दुनियावी दुआएं इनसे करा लूं, तो ताल्लुक बिल्कुल ही महसूस नहीं होगा आपको। लास्ट संडे मैं मुर्शिद साहब के साथ ताल्लुक की अकसाम आपसे अर्ज कर रहा था कि किस किस नवियत का ताल्लुक होता है मुर्शिद के साथ। ये ताल्लुक पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ लोग ऐसे खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने मुर्शिद साहब से सिर्फ प्यार किया है, वहां गर्ज नहीं होती। मैंने यहां एक बार जिक्र किया था कि मैं जिन साहब के पास बैठता था, मेरे मुर्शिद साहब, उनके जो खादिम थे मजीद भाई, उन्होंने एक दिन मुझसे ये कहा कि सरफराज साहब, मुझे शाह साहब से सिर्फ प्यार है, अदरवाइज ना मुझे इनसे इल्म लेना है, ना मैंने इनसे कोई दुआ करानी है, ना मुझे आखिरत की दुआ करानी है, ना दुनिया की दुआ करानी है, बस इनसे मुझे प्यार है, तो आप सिर्फ एक दुआ मेरे लिए कर दें कि मैं इनसे पहले दुनिया से चला जाऊं, क्योंकि इनकी मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो अल्लाह ने कुछ ऐसी मेहरबानी फरमाई कि वो हमारे मुर्शिद साहब के दुनिया से जाने से कुछ देर पहले रुखसत हो गए। अब ये ताल्लुक बड़ा कोई खुश नसीब हो तो उसे हासिल हो जाए, मुर्शिद के साथ सिर्फ प्यार का एक ताल्लुक, वहां ना इससे गर्ज है कि वो कोई दुआ कर दें, ना ये गर्ज के ये इल्म मुझे दे दें, वहां तो मिलना या ना मिलना सब बेमायनी है। इसलिए कि जहनी तौर पर रूहानी तौर पर इंसान मुर्शिद साहब से दूर होता ही नहीं, बशर्ते कि ताल्लुक बेलॉस हो, और वो बेलॉस ताल्लुक बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इन्होंने एक सवाल भी पूछा है, हालांकि ये सवाल पहले भी कोई साहब पूछ चुके हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर फिजिकली हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास है? ये रूहानी मामलात हैं, लेकिन ये जरूर है, ये मैं पूरे वसूक के साथ कह सकता हूं कि मोहर फिजिकली सख्त होती है दोनों शानों के दरमियान, लेकिन थोड़ा सा राइट शोल्डर की तरफ जरा ज्यादा बैक पे मोहर सख्त होती है। और वो जब मोहर लगती है तो दो तीन दिन तो वहां इचिंग काफी देर रहती है, और लगाते जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ही हैं। अब फिजिकली उनके पोजीशन में है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रूहानियत में फिजिकल प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखती, मोहर लगती जरूर है। अगर वाकई कोई वली अल्लाह है तो उसके आपको पुष्ट पर शाने पर मोहर दिखाई दे जाएगी। اگلا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ولی اللہ ضابطے کی خلاف ورزی پر معزول ہوتا ہے یا اس کا صرف علم سلب ہو جاتا ہے؟ کیا بعد میں معافی مل جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی سفارش کام آتی ہے؟ یا سزا کی مدت پوری کرنا پڑتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غلطی کیا ہوئی انسان سے، کہ بڑی غلطی ہو گئی تو معزول ہو جاتا ہے، اس سے بھی بڑی غلطی کر لی تو علم سلب ہو جاتا ہے، اس کا نام لسٹ سے کاٹ دیا جاتا ہے. علم سلب ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ نام ہی لسٹ سے خارج ہو جائے گا. اگر مرشد ہاتھ پاؤں جوڑیں تو معافی مل جاتی ہے. خود انسان صدق دل سے معافی مانگے تو اگر جرم بہت بڑا نہیں ہے تو معافی مل جاتی ہے. لیکن اگر کسی کی حرکتوں سے سلسلے پر حرف آ رہا ہو تو وہ معافی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک پرٹیکولر سوال پوچھا ہے کہ پی سی ایس آئی آر والے ریسرچ اسکالر کی طرح سزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر کسی معزول شدہ ولی اللہ کی وفات ہو جائے تو کیا آخری وقت میں اسے علم و ولایت واپس مل جاتے ہیں؟ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر کسی ولی اللہ نے یہ کہہ دیا ان کے قریبی آدمی کو کہ فلاں تاریخ کو اور فلاں سن میں ان کی یہ سزا ختم ہو جائے گی، تو سزا ختم ہونے کا سلسلہ یہ ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، تو سزا تو ختم ہو گئی. جب ایک جرم کی سزا مل جائے، اس کو بھگت لے کوئی، تو پھر واپس جس طرح سے ایک شخص سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو اسے قید کی سزا ہو جاتی ہے، تو اس کی جب وہ قید پوری کر لیتا ہے اپنی، یا پریزیڈنٹ اس کی سزا معاف کر دیں، تو وہ جرم پھر جرم رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ سزا اس کی بھگت لی. تو اسی طرح ان کی ولایت وغیرہ سب بحال ہو جاتی ہے. ولایت گئی تو نہیں ہوتی، وہ تو موجود ہوتی ہے، صرف غلطی ہوئی اس کی سزا مل گئی، سزا بھگت لی، چیز معاملات پھر بیک ٹو نارمل. ایک صاحب نے شکاگو سے سوال پوچھا ہے. Please explain in detail the following statement. You think you are a small thing, but the biggest realm is hidden in you. یہ درست ہے. یہ غالباً جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا. بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی کمائیگی کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ویژن بڑا ہو جائے. اور جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو انسان کا بڑاپن اور انسان کی بزرگی کا تعلق علم اور عقل سے ہے، اس کی عمر سے نہیں ہوتا. میں نے کسی اور ذمہ میں یہ مثال دی تھی کہ اس کا یوں تجربہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ एक छोटे से कमरे में खड़े हों, अपने आप फील कीजिए वहां, आपको एहसास होगा कि आप लंबे चौड़े हैं, अपने बड़े साइज का होने का आपको एहसास होगा। लेकिन अगर आप किसी फुटबॉल ग्राउंड में या क्रिकेट ग्राउंड के एंड सेंटर में जाके खड़े हो जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आपका कदकाठ, आपकी जसामत बड़ी नहीं छोटी है। और अगर किसी सहरा में आप खड़े हो जाएं जाके, तो आपको यूं लगेगा जैसे आपकी हैसियत वहां रेत के एक जर्रे की सी है, छोटा लगेगा अपने आप। हालांकि आपका कद भी उतना ही रहा, आपकी जसामत भी उतनी ही रही, लेकिन छोटे कमरे में आपकी हद निगाह बड़ी कम रही, क्योंकि दीवारें हैं तो आपकी निगाह दीवार से टकरा के वापस आती, तो आपको अपना आप बहुत बड़ा लग रहा है। वहां फुटबॉल या क्रिकेट ग्राउंड के दरमियान में अगर आप खड़े हैं, तो आपकी हद निगाह बड़ी हो गई है, दूर तक देख रहे हैं आप, तो आप उस हद निगाह के रेफरेंस से अपने आप को देख रहे हैं असल में, या फील कर रहे हैं, तो आपको अपना आप छोटा लगता है। सहरा में जब आप खड़े हैं, तो आपकी निगाह की हद, या जिसको हम कहते हैं कि होराइजन या उफ्क, वो 7.5 मील दूर हो गया। आप 7.5 मील दूर देखेंगे तो आपको स्काई लाइन दिखाई देगी, वहां उफ्क दिखाई देगा, तो आपका वियन 7.5 मील दूर का हो गया। उस रेफरेंस में देख रहे हैं तो आपको अपना आप बहुत छोटा लग रहा है। जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होता, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जब तक के इंसान अपने अंदर बड़ा नहीं होता, तो उसको आप अपना आप बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब उसका इनर सेल्फ बहुत बड़ा हो जाता है, इल्म उसके अंदर आ जाता है, उसकी वियन बढ़ जाती है, तो जितना जो जो इल्म बढ़ता चला जाएगा, इंसान अपने आप को छोटा समझने लगेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो साहिबान इल्म है, फकीर लोगों से जब आप मिलते हैं, तो आप देखिए कि वो लोग अपनी जात के बारे में टच ही नहीं होते। मैंने शायद यहां एक वाक्य सुनाया था इशफाक साहब के, मुर्शद साहब का, बाबा नूर वाले, तो यह इशफाक साहब ही ने मुझे सुनाया था किस्सा। एक बार एक नौजवान वहां आया, और इस तरह से आया कि बजाय इसके कि डेरे के मेन गेट के बाहर बाइसिकल अपनी खड़ी करता, वो ना सिर्फ डेरे के अंदर बाइसिकल पर सवार आया, बल्कि जिस कमरे में बाबा नूर वाले बैठते थे, उस कमरे के अंदर बाइसिकल पर सवार होके आ गया, और बाबा नूर वाले के पास आके जमीन पर पांव टिका के साइकिल पर बैठे बैठे बाबा नूर वाले उनसे कुछ गैर मुनासिब अल्फाज में गुफ्तगू की उन्होंने, तो मुन्नु भाई को बड़ा ताव आया इस बात पर, कुछ वो बिगड़ने लगे मुन्नु भाई जब, तो बाबा नूर वाले ने इन्हें सख्ती से डांट दिया, फरमाया कि इतने लोग यहां आते हैं मेरी तारीफ बयान करते हैं, उनको तो तुमने कभी नहीं मारने, तुम मारने को उठे। एक आदमी आया है जो मेरे बारे में सच बोल रहा है, तुम उसे मारने के लिए उठ रहे हो, बैठ जाओ। ये बाबा नूर वाले का बड़ापन था। उनको उनका इल्म ने इतना बड़ा कर दिया था अंदर से, कि उनके लिए ये कोई बात नहीं थी कि कोई आदमी उनके बारे में नाजेबा अल्फाज या गैर मुनासिब अल्फाज में कुछ बात कह रहा है। यह बड़ापन पैदा होता है इंसान में सिर्फ उस वक्त जब अंदर से बड़ा हो जाए, और जब इंसान अंदर से बड़ा होता है तो उसमें आजिजी आ जाती है, वो अपने आप को छोटा समझता है। कि आगे बढ़ने का तरीका ही यही है कि इंसान अपने आप को बड़ा कमतर समझे, और चूंकि कमतर समझता है अपने आप को तो वो कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूं, और उस बड़ा होने की ख्वाहिश के तहत वो एफर्ट करता है मैक्सिमम लोगों से सीखने की, तो ये अमल उसका जारी रहता है। तो जनाब हजरत अली करमल्लाह वजह के फरमान का मतलब ये है कि इंसान जो अपने आप को, या यूं कहिए कि जो इंसान अंदर से बड़ा है, जो जितना ज्यादा इल्म रखता है वो अपने आप को उतना ही छोटा तसव्वुर करता है, उसमें आजिज़ी उतनी ही होती है। ये फरमान का असल मकसद मतलब ये निकलता है। ये उन्होंने कुछ ज़ाती चीज़ें लिखी हैं जो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है मुझसे मिलने के लिए, मैं उतनी बात का जवाब दे देता हूँ। तो बाकी तो क्योंकि अच्छी चीज़ें लिखी हैं वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। लिखा, बींग इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, ऑब्टेनिंग पाकिस्तान वीज़ा नॉट ईजी। I took the US citizen this year and in time I'm making travel intention. I'm facing some roadblocks. Kindly make dua time and again. Allah give me opportunity to meet you. Allah Ta'ala aapki mushkilein aasan farma de, और अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आपको पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए और आप विज़िट पर पाकिस्तान आ जाएं। तो जब आप पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात हो जाएगी। किसी साहब ने पूछा है कि बाज़ औक़ात हम खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए अपने फिनंशियल रिसोर्सेज बढ़ाना चाहती हैं लेकिन बावजूद ऐसा नहीं कर पाते, ऐसे में क्या किया जाए कि वही माली वसाइल काफ़ी हो जाए। नहायत आसान सा हल है इसका। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ रिज़्क़ अता फरमाया है बगैर ये देखे कि कम है या ज़्यादा, हम अपने अहले खाना को लुक आफ्टर करने के बाद जो कुछ मैक्सिमम स्पेयर कर सकते हैं, चाहे वो 2 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, आधी रोटी है, वो हम खलूस नीयत से दूसरों की खिदमत में सर्व कर दें। रब ताला उसी से राजी हो जाता है और वो ऐसी बरकत अता फरमा देता है कि इंसान की वो खिदमत बढ़ती चली जाती है। तो ये अगर हम ये कहें कि पहले अल्लाह ताला हमारे रिसोर्सेज वसी कर दे फिर हम खल्के खुदा की खिदमत करेंगे तो फिर ये हो नहीं पाता। हम अगर ये चाहते हैं कि हमें एक दुकान से खूब प्रॉफिट हो तो पहले हमें एक दुकान खरीदने पर इन्वेस्ट करना होगा, फिर उसके अंदर स्टॉक्स भरने पर इन्वेस्ट करना होगा, सेल होगी तो जितनी वसी दुकान है उसी वसत की नस्बत से फिर प्रॉफिट शुरू होगा। ये नहीं हो सकता कि पहले प्रॉफिट आ जाए फिर हम शॉप खरीदें और उसमें स्टॉक्स भरें और फिर सेल करें, ऐसा कभी नहीं होता। तो रब ताला के नाम पर खल्के खुदा की खिदमत करना, ये हो नहीं सकता कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला पहले हमारे रिसोर्सेज बड़े कर दे, बढ़ा दे, फिर हम उस पर उससे अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे, वो नहीं होगा। तो अगर वाकईतन हम मुखलिस हैं खिदमत खल्क करने के लिए तो जो कुछ रब ताला ने हमें अता फरमाया है अपने अहले खाना को लुक आफ्टर करने के बाद रब ताला, क्योंकि पहला हक हमारी इमीडिएट फैमिली का हम पर है, तो उनको लुक आफ्टर करने के बाद हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें तो रब ताला उसमें बरकत अता फरमाता है और वो खिदमत का दायरा वसी करता चला जाता है। खुद इंसान को समझ नहीं आता कि ये दायरा कहाँ से इतना वसी हो रहा है। तो आप इसका इंतजार न कीजिए कि रिसोर्सेज आपके बढ़ जाएं फिर आप खल्के खुदा के काम आए, आप जैसे भी कर सकते हैं खिदमत खल्के खुदा की शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अर्ज ये है कि क्या तौबा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं और उन गुनाहों के नतीजे में होने वाले नुकसानात या बीमारियों का भी अजाला हो जाता है, या तौबा करने से सिर्फ गुनाह ही माफ होते हैं और इनकी वजह से होने वाले नुकसानात अंडू नहीं होते? मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दें। बात यह है कि आप डॉक्टर हैं इसलिए आपके प्रोफेशन से ही मैं कोट करना चाह रहा हूं। एक पेशेंट है जो अपनी गलतियों की वजह से बीमारी में मुब्तला हो गया, जब डॉक्टर के पास आता है तो उस बीमारी की वजह से उसके जिस्म को जो नुकसान पहुंच चुका होता है वह आप अंडू नहीं कर पाते। तो पहली आपकी एफर्ट ये होती है कि मैं उस बीमारी को डायग्नोज कर लूं जिससे वो पेशेंट सफर कर रहा है। तो जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो पहले उस बीमारी के सिम्टम्स दबते हैं, उसके बाद उस बीमारी का इलाज होता है। जो बॉडी को डैमेज हो चुका है वो फिर रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ ठीक होता है। मुझसे जो गुनाह हो गए उससे जो जज्बाती जिस्मानी और माली नुकसानात हुए हैं उन सब के बाद मैं तौबा कर रहा हूं तो वो तो हो चुका। अगर मैंने सिद्क दिल से तौबा कर ली और आइंदा के लिए उन गुनाहों से परहेज कर गया मैं, तो रफ्ता रफ्ता रब ताला अपनी रहमत के सदके मुझे उस खसारे से भी निकाल लेगा जो इन गुनाहों की वजह से हुआ है, खसारे को भुगता है मैंने, जो जज्बाती भी है, जिस्मानी भी है और दुनियावी माली भी है, तो उससे रफ्ता रफ्ता अल्लाह दूर कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि सिदक दिल से मैं गुनाह से तौबा कर लूं और फिर आइंदा के लिए मैं उस तौबा पर कायम रहूं, तो नुकसानात से भी अल्लाह ताला बचा लेता है। ये जो आपने आखिर में हुक्म दिया है कि मैं मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर दुआ कर दूंगा। ये किसी साहब ने रब ताला के नाम की दावत सगीरा और दावत कबीरा की तादाद पूछी है, दोनों की तादाद, वक्त विर्द और ज़कात अदा करने के बाद कितनी तादाद को विर्द में रोज़ाना रखें, और इस इस्म के खसूसी फवायद भी बयान कर दें। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं बारहा अर्ज करने की कोशिश कर चुका कि ये जो जिक्र अजकार हैं, वज़ाइफ हैं, औराद हैं, तस्बीहात हैं, ये हर इंडिविजुअल का इनफरादी मामला है। एक ही लफ्ज़ का वक्त अल्लाह का कोई एक इस्म, हम इसमें जात को ले लेते हैं अल्लाह, इसकी तादाद मैन टू मैन वेरी कर जाएगी, इसका पढ़ने का वक्त मैन टू मैन वेरी कर जाएगा। और इन सब चीजों से पहले तो बात यह है, क्या मैं इस इस्म का विर्द करूं या ना करूं, या कोई दूसरा इस्म मैं विर्द कर लूं, पहले तो यही डिसाइड करना होगा। फिर जाकर यह आ जाएगा कि उसकी कितनी तादाद पढ़ी जाए और किस वक्त पढ़ी जाए, कितना अरसा पढ़ी जाए। ये जो दावत सगीरा और दावत कबीरा की बात की, वो वेरी करेगा उसका। तो इसको जनरलाइज करना मुमकिन नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा मैं सबूत आपसे अर्ज कर देता हूं, देखिए किताबों में जगह जगह और बड़े 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 जय्यत और मुस्तनद औलिया कराम से रवायत किए हुए वज़ाइफ हैं, बड़े से बड़े वली अल्लाह का हवाला देकर लिखा हुआ है कि साहब, जो आदमी इसका विर्द करे उसको कभी माली तंगी नहीं आती, अगर इसका कोई विर्द कर ले तो बीमार नहीं होता, अगर इसका विर्द कर ले तो परेशानी लाहक नहीं होती। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी खास मकसद के तहत जिक्र अजकार, वज़ाइफ, तस्बीहात, इसके करने का रिवाज बेपनाह है। हर आदमी को देखेंगे तो वो आपको विर्द करता हुआ दिखाई देगा। सवाल ये है कि अगर जैसे लिखा हुआ होता है, अगर वो वैसा ही है, तो फिर तो हम में से किसी आदमी को माली लिहाज से तंग नहीं होना चाहिए, हम में से किसी शख्स को बीमार नहीं होना चाहिए, हम में से किसी शख्स को परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वो होता यह है कि एक वली अल्लाह के पास अगर मैं चला गया, उन्होंने मुझे पढ़ने को एक वजीफा बता दिया, मैंने पढ़ा, मेरा काम हो गया फौरन। अब मैं ये तो नहीं समझ सका कि उन वली अल्लाह ने जो मुझे पढ़ने को दिया था उसके अंदर कितने फैक्टर काम कर रहे थे जो मैंने देखे नहीं, या मैंने मुझे उनका इल्म नहीं हो पाया। उन्होंने मेरी जिस्मानी इस्तेदाद देखी है, उन्होंने मेरी रूहानी कैफियत देख ली है, उन्होंने ये भी देख लिया है कि मेरा जहन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव किस टाइम पर होता है। उन्होंने ये चेक करने के बाद मुझे वो वजीफा बताया है पढ़ने को। अब ये जरूरी नहीं कि किसी और आदमी की भी वही रूहानी कैफियत हो, ये जरूरी नहीं कि किसी आदमी का जहन उसी टाइम पर उतना रिसेप्टिव हो। और फिर सबसे बड़ी एक बात है इसमें, वो ये है कि मेरी जिंदगी के बारे में रवैये क्या हैं, ये बहुत काउंट कर जाएगा। हम दिन रात पढ़ते हैं कि जिस आदमी के हलक से लुक्मा हराम उतरा उसकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत की बुनियादी शर्त यह कही जाती कि लुक्मा हराम से बचा जाए। अब मैं अगर विर्द करता हूं और मेरी कमाई मशकूक हो जाती है फॉर सम रीजन, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रिश्वती के जरिए से हो, और बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर ये जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि दुआ की कबूलियत की बुनियादी शर्त यह है कि इंसान रिस्क हलाल खाता हो, तो वो तो पूरा ना हुआ, फिर वजीफा क्या करेगा। मैं किसी शख्स का हक मारने का आदी हूं और हक का मारना वो इतनी छोटी चीज पर भी चले जाता है कि अगर लोग कितार में खड़े हैं तो मैं किसी जान पहचान की वजह से कितार जंप करके, क्यों जंप करके मैं सबसे आगे चला जाता हूं, मैंने लोगों का हक मार लिया। मैं सड़क को इस्तेमाल करता हूं जो दूसरों का राइट ऑफ वे है, मैं वो राइट ऑफ वे उनको नहीं देता हूं, मैंने दूसरों का हक मार लिया है। मेरी गवाही सच्ची नहीं है, गवाही सिर्फ वही नहीं है जो हम अदालत में देते हैं। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोगों के बारे में बयान करते हैं बात, वो गवाही है। तो अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो मैं लोगों की, जिस तरह कहते हैं जानो माल और इज्जत भी, दूसरे मुसलमान की इज्जत मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उसे डैमेज नहीं कर सकता किसी तरह। मैं वजीफा पढ़ता हूं लेकिन जुबान के चस्के के लिए मैं सुनी सुनाई बात किसी के बारे में आगे कन्वे करता हूं कि उसकी इज्जत पर हरफ आ गया, तो वो वजीफा क्या करेगा। सही नताइज इंसान को मिलते उसी वक्त हैं जब कोई दूसरा एक कामिल मर्द कामिल, एक वली अल्लाह उसकी निगरानी कर रहा होता है कि उसको हाथ पकड़कर रोक ले जहां वो गलत होने लगता है, तो फिर उसका फायदा मिलेगा हमें। वरना हम देखते हैं सुबह से शाम तक, बमें मेरे मेरी अपनी जात भी इसमें शामिल है, पढ़ पढ़ के हम महाव्रत में बात कह रहा हूं कि पागल हो रहे हैं, लेकिन उसके असरात नहीं मिलते हमें। हमारे कॉन्सेप्ट्स तो इस तरह से कंटेमिनेट हो गए हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे ये कहते हुए कि मैं पांच वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, रोजा भी रखता हूं, जकात भी देता हूं, लेकिन फिर मैं मुश्किल का शिकार हूं। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा क्लियर कि मसीबत का और हकुकुल्ला की अदायगी का आपस में क्या ताल्लुक। क्या हकुकुल्ला की अदायगी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पे मसीबत ना आए, तो फिर वो हकुकुल्ला की अदायगी तो ना हुई, वो तो कुछ और बन गया। ज्यादा जोर हम अगर हम इस राह पे जाना चाहते हैं, अल्लाह की राह पर चलना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, रब ताला की दोस्ती चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज यह है कि हम अपनी जिंदगी के रवैये सुन्नत के मुताबिक ढाल लें। और देखिए अल्लाह ताला की कर्म नवाजी कैसे होती है इंसान पे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे पे इसी से कंटिन्यू करेंगे।